ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज मंगलवार का दिन है, 25 सितंबर 2012 और सबका आपका संध्या जागृति कार्यक्रम में स्वागत है। हम सब लोग हर साल में बरसाना में जाते हैं और जो लोग नए हैं उनको पता नहीं होगा कि बरसाना जो है वो मथुरा में है और मथुरा से 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक सुंदर गांव आता है, उसका नाम है बरसाना और उस गांव में राधा रानी का बचपन गुजरा था और वही इसी गांव में हम लोग अपने आँखों का कैंप लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लगाते हैं वैसे वहाँ पर भी लगाते हैं। तो उस गांव में चार पहाड़ी है, एक पहाड़ी है भानुगढ़, दूसरी पहाड़ी है विलासगढ़, तीसरी पहाड़ी है दानगढ़ और चौथी पहाड़ी है मानगढ़। और ये चार पहाड़ी के अलावा एक छोटी सी पहाड़ी है, उसका नाम है मोरकुटी। उस मोरकुटी पे भगवान और राधा रानी मोर बन के मोरनी बन के नाचे थे। हफ्ते में से कितने लोग वहाँ पर गए हैं? हाँ, आपने मोरकुटी का दर्शन किया है क्या? बहुत सुंदर स्थान है वो। तो उस मोरकुटी में भगवान ने राधा रानी के साथ मोरनी बनकर नाच किया था। तो ये सब जो आंखों के मरीज यहाँ बैठे हुए हैं उनको देखकर मुझे आज उस मोरकुटी के बाबा की याद आई। मोरकुटी में एक बाबा थे महाराज, वहाँ भजन करते थे लेकिन वो अंधे थे, उनको आंखों से नज़र नहीं आता था। वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनके पास एक शिष्य था। कौन था वो शिष्य मालूम है आपको? एक सिंह था, सिंह लायन उनका शिष्य था और वो हमेशा महाराज की कुटी में रहता था और महाराज के लिए रोज सुबह वो भिक्षा मांगता था। उसके गले में एक कपड़े की झोली लटका कर महाराज जी उसको गांव में भेजते थे और वो गांव में हर रोज जाकर किसी के दरवाजे पे खड़ा रहता था कि सब जानते थे कि ये महाराज जी का शेर है, सिंह है। तो उसके झोली में रोटी डालते थे और रोटी के द्वारा झोली भर गई, फिर ये सिंह जो है वो पहाड़ चढ़ के अपने बाबा के पास पहुंचता था और बाबा फिर उसके झोली से रोटी निकालते थे, भगवान को भोग लगाते थे और खुद खाते थे और बची हुई रोटी फिर सिंह खा लेता था। ऐसा भी होता है। हमारा शास्त्र ये बताता है, मतलब बायोलॉजी जीव शास्त्र, कि शेर जो है, शेर या सिंह जो है वो भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा और गाय भूखी मरेगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। लेकिन ये सिंह ऐसा था जो एक शुद्ध भक्त के संग से इतना पवित्र हो गया था कि उसने अपना सिंह का स्वभाव जो है वो छोड़ दिया था और सिंह होते हुए भी उससे कोई भी गांव के लोग डरते नहीं थे। वो गांव में घूमता था तो कोई भागता नहीं था क्योंकि वो सिंह नहीं साधु बन गया था। ऐसे वो महात्मा थे जिनके संग के वजह से एक सिंह भी भक्त बन गया था। तो वो महात्मा की कहानी ऐसी है कि वो मोर कुटी जहाँ पर भगवान मोर बने थे उसी कुटी में रहते थे और वहाँ पर भजन करते थे। तो एक दिन उनको स्वप्न आया और स्वप्न में राधा रानी आई और दर्शन दिया उन्होंने और बाबा को आदेश दिया कि बाबा हमने जो मोर और मोरनी बनकर नाच किया था उसका आप चित्रपट निकालो, ड्राइंग करो, ड्राइंग। तो बाबा बोलता है कि मैं तो अंधा हूँ, मैं ड्राइंग कैसे करूँगा। वो बोलते हैं हम, राधा रानी कहते हैं कि हम आप पर कृपा करेंगे और हमारी कृपा से आप क्या नहीं कर सकते। बोला आप डरो नहीं, हम आपको ऐसी कला देंगे कि आपकी आँख न होते हुए भी आप उस चित्रपट को निकाल सकते हैं। और ये आश्वासन देने के पश्चात उसके स्वप्न में कृष्ण राधा मोर मोरनी बनकर नाचने लगे और उस अंधे भक्त ने उस चित्रपट मतलब उस लीला को देखते देखते ही वो चित्रपट अपने हाथ से उतार लिया, बिना देखे कागज़ पर उतार लिया। और आज भी वो चित्रपट जो है उस मोर कुटी में रखा हुआ है जो वो अंधे ने राधा रानी की कृपा से उसको उतारा था। ऐसा क्यों हुआ? उसकी आंखें तो नहीं थी, उसको दृष्टि नहीं थी, फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि राधा रानी की कृपा से उसकी आत्मा की आंखें खुल गई थी। हमारा कैसा है? हमारी आंखें खुली हुई है लेकिन आत्मा की आंखें बंद है, इसलिए हमको दुनिया में सत्य जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे मरीज बैठे हुए हैं जिनकी आँखों में मोतिया हो गया है, हाँ, और उस मोतिया का ऑपरेशन किया गया है और दोबारा उनको नज़र आ रहे हैं कि क्या दुनिया में क्या क्या है, सूर्य उजाला है कि अंधेरा है, कि टीवी पर क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या दिया है, वो दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन बरसाने में जो हम लोग आईकैम करते हैं उसमें लोग जब आँखों के बाद ऑपरेशन के बाद में दृष्टि प्राप्त होती है तो क्या करते हैं मालूम है किसको? तुरंत टीवी खोलते हैं और चैनल देखते हैं आज तक में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो तुरंत सबसे पहले जाते हैं राधा रानी के मंदिर में और वहाँ जाकर दर्शन करते हैं, जो दर्शन आँखों में मोतिया होने की वजह से कई साल से या कई महीने से या कई दिन से वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तुरंत घर में आते हैं और पाठ का किताब खोलते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, जैसे रामायण, महाभारत, उसके बड़े बड़े ग्रंथ खोलते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं, क्योंकि कई दिन से नज़र न होने की वजह से वो पाठ नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए अपने श्लोक, प्रार्थना किताब पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ने लगे तुरंत। हाँ, तो अलग अलग जगह पर दृष्टि न होने पर अलग अलग परेशानी है। यहाँ पर मुंबई में, मुंबई के आसपास के गांव में अगर हमको नज़र नहीं आ रहा है मोतीबिंद की वजह से, हमको क्या परेशानी है? अरे टीवी देखने को नहीं मिल रहा है, पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज झज कर बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भगवान के धाम में जब लोगों को मोतियाबिंद होता है तो उसका दुख क्या होता है? अरे हमको भगवान के मंदिर का दर्शन नहीं हो रहा है, राधा रानी कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, हम लोग अपना भागवत का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा है वहाँ पर सत्संग में कई अंधे लोग आते हैं और सत्संग में कथा सुनने को बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है, ये आँखें ना होने पर भी आत्मा की आंखें खुल जाती है। अभी कुछ लोग यहाँ पर मोतीबिंद का ऑपरेशन होने के बाद में पट्टी लगा के बैठे और आप सब लोग बिना पट्टी के बैठे, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग सब लोग एक ही बीमारी के मरीज हैं सब लोग। कुछ लोगों का यहाँ पर सर का ऑपरेशन हो गया है, कुछ लोगों का किडनी का ऑपरेशन हो गया है, किसी को पीछे पीठ में तक कष्ट है, हाँ, कई प्रकार की बीमारियाँ हॉस्पिटल में होती हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि शरीर में कितनी बीमारी है, कितनी प्रकार की बीमारी है, हाँ, क्या क्या नहीं हो सकता है। किसी किसी को ऐसी बीमारी होती है कि आधा मुख जो है ना वो पूरा हस्ती रोग से भरा रहता है और आधा मुख सीधा रहता है, आधा मुख जैसे कि मांस से भरा हुआ है पूरा और आधा मुख नॉर्मल है। वॉट ऑल कैन हैपन? जब शरीर बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे की वजह से क्या क्या नहीं होता है। जो अपनी जोड़ें अभी आराम से हिल रही है वो हिलना बंद हो जाती है, जब झट से उठ जाते हैं तो बहुत देर से उठते हैं आराम से एकदम पकड़ पकड़ के, हाँ। सभी सुविधाएं, सभी जो हमारा सुकून है, हाँ, जो सुविधा है हमारे लिए, वो समय के साथ में नष्ट होती जाती है। जैसे समय बीतता है, आप सब लोग जवान थे ना एक दिन, दौड़ते थे, भागते थे, सब लोग बूढ़े हो गए क्योंकि समय बीत गया बीच में, अभी कुछ लोग समझते हैं कि हम जवान हैं, सबके बाल काले हैं, हम बहुत चुस्त हैं, हाँ सब लोग आएंगे एक दिन कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने के लिए, हाँ समझ लेना। तो जैसे बाल सफ़ेद होते हैं समय जाने के अनुसार, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही मोतिया होता है, वैसे ही जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है, वैसे ही सर में तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, बीमारी होती है, डायबिटीज होता है। ये हमारा मूल मोतियाबिंद है, ये मोतियाबिंद तो हमारे आँख के अंदर है और हमारी आँख हमारे शरीर का एक हिस्सा है और वो शरीर जो है हमारे आत्मा पर छाया हुआ है और आत्मा वो शरीर के अंदर है और वो आत्मा पर वो मोतियाबिंद का रोग हो गया है अज्ञान का। हम क्या मंत्र बोलते हैं रोज, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। आत्मा को क्या रोग है, अज्ञान का रोग है, अविद्या का रोग है। आत्मा समझता है कि मैं शरीर हूँ और इस अज्ञान की वजह से आत्मा अपने आप की पहचान खो बैठा हुआ है, अपने आप को पहचानता नहीं वो कौन है। वो सोचता है कि मैं गांव का व्यक्ति हूँ, मैं सोचता हूँ मैं शहर का व्यक्ति हूँ, आप सोचते हैं कि मैं आदमी हूँ, ये सोचते हैं कि हम औरत हैं, हम बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं हम अनपढ़ हैं, कोई कहते हैं कि हम धनवान हैं, कोई बोलते हैं हम गरीब हैं, कोई बोलते हैं हम अमेरिकन हैं, कोई बोलते हैं हम इंडियन हैं, हाँ ये हमारे आत्मा की पहचान नहीं है। हमारे आत्मा की पहचान ये है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र हैं। हमारा शरीर है वो अलग अलग प्रकार का बना हुआ है, भारतीय है, अमेरिकन है, इंग्लैंड है, और गांव का है, शहर का है, गोरा है, काला है, जवान है, बूढ़ा है, बीमार है, अच्छा है, ये सारी हमारे शरीर की पहचान है। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के बालक हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके यहाँ से ही आए हैं, उनका संग छोड़कर इस दुनिया का संग लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर आकर दुख भोग रहे हैं। इसी अज्ञान की वजह से हम सब लोगों को बार बार बीमारियाँ, बार बार बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, कष्ट होते रहता है। ये हम सबको पहचानना चाहिए। जो लोग अभी जवान हैं उनको ये जानना चाहिए कि एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे। जो लोग जीवंत है, जीवित है, और जो मरने वाले लोगों को देखते हैं हॉस्पिटल में कि मर रहा है, उसका अभी उसको क्या कहते हैं डिस्पोज कर रहे हैं, शमशान लेके जा रहे हैं, उस मरते हुए लोगों को देखकर हमको पता होना चाहिए एक दिन हमारी भी गति वही होने वाली, कोई नहीं बचने वाला है। हाँ लेकिन युधिष्ठिर महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्यकारक बात क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न जो प्रश्न पूछा गया था वो उनके पहले 5 भाइयों को पूछा गया था, उसका जवाब नहीं दे पाए वो। और धर्मराज को जब पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि दुनिया में सब लोग मर रहे हैं लेकिन जो जीवित है वो सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। हर एक व्यक्ति धीरे धीरे क्यों ना हो, कुछ समय के बाद क्यों ना हो, मरता हुआ नजर आता है लेकिन जो जीवित है वो सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा और वो अपने जीवन की योजनाएं बनाते रहता है। और फिर एक दिन वो भी धराशायी होता है तो बाकी लोग सोचते हैं कि वो उनका हो गया, हमारा नहीं होगा। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है वो सुनकर समझता है और नहीं तो देखकर समझता है। सुन रहा है कि सबके लिए मृत्यु निश्चित है तो समझ जाता है कि यस हमारे लिए भी निश्चित है, मैं चाहे 20 साल का हूँ जवान हूँ, 25 साल का हूँ जवान हूँ, लेकिन मृत्यु निश्चित है। हॉस्पिटल में हमने देखा है ना, 10 साल के, 20 साल के, 15 साल के, 7 साल के, 2 महीने के, सब बालक जितने उम्र के सब मरते हुए नजर आते हैं ना, कि नहीं आते। हर उम्र में मृत्यु होती है, ऐसे कोई उम्र है क्या मृत्यु नहीं होती है? ऐसे कोई एज है आपको मालूम है ऐसा? सब लोग उसी एज में रहना चाहेंगे, आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी उम्र नहीं है जन्म होने के बाद और जन्म होने के पहले भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बीमारी होती है या अगर माता ही उनको गिरा देती है, उनका गर्भपात करा देती है ना, पैसा नहीं है, 2-4 बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी, कैसे पालेंगे चौथे बच्चे को, तो उसको मार देते हैं। तो गर्भ से ही मृत्यु की श्रृंखला शुरू हो जाती है। हाँ इज दैट राइट? आप लोग तो डॉक्टर नर्सेस सब लोगों ने आपको पता है, जैसे ही गर्भ में जीव आता है वैसे ही मृत्यु का समय शुरू हो जाता है और वो गर्भ से लेकर जन्म तक, जन्म से लेकर जवानी तक, जवानी से बीच वाली उम्र तक, बीच वाली उम्र से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से मृत्यु तक सब जगह चलते रहता है। वो कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन होगा जरूर, इतना निश्चित है ना। जीवन और मृत्यु की दौर भगवान के हाथ में है, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता, ये जीवन का सत्य है। लेकिन ये सत्य जब जानते हैं तब हमारा ज्ञान का उदय होता है। अगर हम सब लोग, आप सब लोग अगर बैठे हुए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मंगलवार के दिन दोपहर के समय बैठकर सोच रहे हैं कि क्या है ये बात, और हम लोगों को अगर यकीन आता है कि हम लोग हाँ ये सच है कि एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो प्रश्न ये होता है कि इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। हमको समझ में आया है कि हमारी मृत्यु होगी, तो प्रश्न उठता ये है कि हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कथा सुनते हैं फिर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। वैसे हाथी की कहानी है ना, हाथी, वो हाथी जो है ना जब भी स्नान करता है नदी में, बहुत बढ़िया स्नान करता है, वो जोरदार स्नान करता है, लेकिन स्नान करके बाहर आता है और तुरंत ही जमीन की मट्टी उठाता है और अपने बदन पे डाल देता है। उसको कहते हैं कुंजर स्नान, मतलब कुछ समय के लिए स्वच्छ रहता है और बहुत समय के लिए मट्टी से भरा रहता है। हम लोग भी वैसे हैं, कथा में बैठते हैं तो कथा में प्राप्त हुए ज्ञान से शुद्ध हो जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं और वही करते हैं जो पहले कर रहे हैं। हमने देखा है कई लंबी लंबी बड़ी बड़ी कथाएं चलती हैं, बड़े बड़े महात्माओं की कथा होती है, सब लोग भाग भाग के आते हैं, लेकिन बीच में 7 बजे, 7:15 बजे, 7:45 बजे भाग जाते हैं। क्यों? अरे वो है ना टीवी पे सीरियल आने वाला ना, क्या नाम, सास भी कभी बहू थी, हाँ बहू भी कभी सास थी क्या मालूम क्या क्या होता है, हाँ क्या अंजलि आज पति को त्याग देगी कि नहीं, देखिए 7:15 बजे कलर्स चैनल पे, हाँ क्या आज सुमन का विवाह होगा, सब लोग देखने भागते हैं। कथा छोड़ के यहाँ पर कृष्ण कंस का वध करने वाला है कथा में, फिर भी उसके पहले ही जाते निकल के टीवी देखने के लिए। कारण क्या उसका? क्योंकि जो सुन रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, जो अज्ञान के रोग को नष्ट करने के लिए जो ज्ञान मिल रहा है वो दिमाग में उतर नहीं रहा है, खाली एक मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं उसको। लेकिन ये जीवन का शास्त्र है, टीवी पे जो चल रहा है वो खत्म होने वाला है और वो सत्य नहीं है, वो सब झूठ मूठ का है, वो सब सच कहानी नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं और उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कथा लोग सुनते हैं और फिर घर पे जाके शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, माड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, फिर घर जाके सिगरेट पीते हैं, फिर घर जाके जानवर की हत्या करके उसका मांस खाते हैं। ये हमारे अज्ञान का कारण है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मतलब हम अज्ञान के अंधकार में क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि हम ये सब पाप करते रहते हैं, मांसाहार करते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, हाँ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और कोई गांजा पीता है, चरस पीता है, गांव में क्या क्या करते हैं, लोगों को चीटिंग करते हैं, नशा करके फिर लोगों को लूटते हैं, कोई औरतों को बदनाम करते हैं और उसको खराब कर देते हैं। ये सब क्रिया करने से आत्मा का अंधकार और बढ़ जाता है और आत्मा नरक में धकेली जाती है, दुख भोगने के लिए, यातना भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए। इसलिए हमको मनुष्य होने पर इन पापों से बचना चाहिए। उसके लिए पहले आत्मा को ज्ञान का प्रकाश मिलना चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश मिलेगा तो समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, तो गलत कार्य जो उसको बंद करना चाहिए। सबसे पहले जो प्राणियों की हत्या करके उसका मांस हम खाते हैं वो बंद करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दर्द देने से हमको केवल वापसी में दर्द ही मिलेगा। कभी भी आपको जो जीवन में अनुभव किया गया, मैंने आपको गाली दिया और आपने मेरे को बहुत तारीफ किया, मेरा कितने बढ़िया आदमी आप ऐसा हो सकता है क्या? मैंने आपको बुरा भला कहा, जोरदार एकदम कड़क शब्द में कहा, और आपने मेरी स्तुति की उसके बाद में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो मैं आपको दूंगा वही आपको मुझे देंगे, कभी डर के मारे सामने देंगे नहीं, बाद में जरूर देंगे। और अगर आपने, मैंने आपके प्रेम के साथ आपका व्यवहार किया आपके साथ, तो आप मेरे को सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे, ये निश्चित है। पत्नी के लिए भी सही है, बच्चे के लिए भी सही है, पड़ोसी के लिए भी सही है, जिससे आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा आपको रिटर्न में आएगा। आपने दर्द दिया है तो दर्द वापस आएगा, कष्ट दिया है, पीड़ा दी है तो कष्ट पीड़ा वापस आएगा। उसी तरह से अगर हमने किसी जीव जंतु को कष्ट दिया है, उसका मांस खाया है, तो वो कष्ट पीड़ा हमको वापस आएगा, मतलब अपने आप गायब नहीं हो जाएगा। ये ध्यान में समझना, हाँ मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कोई संस्कृत श्लोक नहीं बता रहा हूँ। ये समझना अज्ञान को दूर करना है। ये हमारी आत्मा बिंद, आत्मा पर जो अज्ञान का मोतीबिंद लगा हुआ है वो नष्ट करने का तरीका ये है। और उसके बाद सब छोड़ देने के बाद में क्या करना है, भगवान को बचा हुआ जो अन्न है शाकाहारी वो अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाना है। फिर नशा कर रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, दारू पीकर लीवर को और दिमाग को और सिगरेट पीकर फेफड़े को खराब कर रहे हैं, हाँ वो सब नशा करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि नशा जो है वो ऐसी एक वस्तु है, आपको पता नहीं होगा शायद कि नशा करना खराब क्यों है। आप बोलेंगे नशा करके मैं किसी को कष्ट देता नहीं हूँ, मैं केवल अपने आप को कष्ट देता हूँ, तो इसमें क्या तकलीफ है। चलो मांसाहार तो मतलब किसी और को जो कष्ट हो रहा है बस छोड़ देंगे उसको, लेकिन मैं जब सिगरेट पीता हूँ तो किसी और को नुकसान नहीं होता, खाली मुझे नुकसान होता है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन वो एक महान पाप क्यों है, क्योंकि जीव को आत्मा को भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य का दिमाग दिया है, और नशा करने से वो जो दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, होता है ना। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर दो बोतल शराब मार के आए तो कैसा बिहेव करेगा, वो कैसा बर्ताव करेगा, अच्छे आदमी की तरह बर्ताव करेगा क्या, वो कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी करेगा, किसी को भी हाथ लगाएगा, हाँ एकदम गर्व व्यवहार करेगा, औरतों से करेगा, आदमियों से करेगा, कुछ भी बक देगा जो मुँह में आया वो, हाँ किसी को भी मार देगा, किसी को गाली देगा, कुछ भी तोड़ देगा निकाल के, है ना। मतलब जो अच्छे दिमाग से आदमी कर सकता है वो अच्छे दिमाग होने पर भी शराब के या नशा के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति मुझे कृष्ण भावना में लेकर आया, बहुत बुद्धिमान लड़का था वो, मेरा दोस्त था वो, मैं मेडिकल में आया और वो IIT में गया, लेकिन IIT में जाकर बुरी संगत की वजह से उसने ब्राउन शुगर यानी कि क्या कहते हैं उसको, हीरोइन, क्या कहते हैं उसको आपकी भाषा में, गर्द बिना शुरू कर दिया उसने। मुझे किसी भक्त से पहचान करा दिया और खुद गर्द पीने के नशा में चला गया। तो इतना बड़ा बुद्धिमान लड़का था, SSC बोर्ड में आया था वो हमारे साथ में, फिर IIT में गया, हाँ इतना रैंक लेकर बहुत बुद्धिमान था वो। लेकिन 3 साल के बाद में उसको कॉलेज से निकाला गया, उसके बाद में वो उसने रिवॉल्वर खरीदी किया और रिवॉल्वर दिखाकर वो बोरीवली में लूटमार करता था, दुकान में जाके हफ्ता लेता था, रिवॉल्वर अपने पिताजी के सर पर रखकर उनसे पैसे निकालता था, रिवॉल्वर सर पर रखकर माता के उसकी चांदी की बर्तन कपाट खोलकर उसके जेवर सब निकाल के बेचता था, पूरा घर खाली कर दिया उसने, एक छोटी सी रिवॉल्वर खरीद के सब खाली कर दिया। ये सब कार्य जो है वो अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति का कार्य है कि जिसका दिमाग फिर गया पूरा, उसके कार्य है, बताओ आप। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि नशा करना शुरू किया, नशा करना शुरू किया तो सत्य बोलना छोड़ दिया और जो भी बुरा जो भी करना होता लाइफ में वो सब करने लगे, अच्छे बुरे का ख्याल नष्ट हो गया। माता के जिसने गर्ब दिया है, 9 महीने गर्भ में रखा था, उसके सर पे बंदूक रखे, उसके चांदी के बर्तन और ग्लास और वाटी और जेवर निकाल के वो बेचता था। बाद में उसको पैरालिसिस हो गया 35 साल की उम्र में, मर गया वो, 1 रुपया वो कुछ कमा नहीं सका, कॉलेज से हद पार कर दिया गया, समाज ने हद पार कर दिया, दोस्तों ने हद पार कर दिया, हफ्ता निकालने का ये सब गुंडों का काम करने लगा। क्यों, अच्छा दिमाग होने पर भी उसका दुरुपयोग किया और नशा करना शुरू किया। तो ये पाप क्यों है, जो दिमाग हम भगवान को समझने के लिए वापर सकते हैं, जिसका उपयोग भगवान को समझना, भगवान ने जो उपदेश किया है उसको समझने के लिए कर सकते हैं, वो दिमाग अगर नशा करते हैं तो पूरा भ्रष्ट हो जाता है और वो जानवर से भी घिनौना हो जाता है। क्योंकि जानवर भी कभी भी प्रकृति का नियम तोड़ते नहीं है, आप देखो कभी तोड़ते क्या, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, तुरंत सो जाते हैं। आदमी क्या करता है, 12, 2, 4 बजे तक डिस्को डांस करता है, वेश्या व्यवसाय करता है, हाँ जगह रहता है, दादर में चले जाओ, दादर में जाओ, ग्रांड रोड में जाओ, रात भर लोग जगे रहते हैं, म्यूजिक चलते रहते हैं, लाइट चली रहती है, लोग खाते हैं पीते हैं, नशा करते हैं, सेक्स करते हैं, दिन भर रात भर चलते रहते हैं। और पंछी देखो, प्राणी देखो, रात हो गए सो जाता है और सुबह उठे ही तुरंत उठ जाता है। सूरज आने के पहले ही पक्षियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। और इंसान रात भर जगता है और दोपहर 12 बजे उठता है। तो प्रकृति का नियम कौन तोड़ता है? केवल मनुष्य तोड़ता है। बाकी कोई भी योनि भगवान की बनाई हुई प्रकृति का नियम तोड़ते हुए नजर नहीं आते। एक मनुष्य ही ऐसा है, वो अज्ञान की वजह से सब कुछ खाता है वो। हाँ, अरे चाइना के अंदर और उधर हांगकांग के अंदर तो कॉकरोच भी खाते हैं और लिजर्ड भी खाते हैं, चिपकली भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, मक्खी भी खाते हैं, मच्छर भी खाते हैं, सब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग दुनिया में जो प्राप्त है वो खा लेते हैं। प्रभुपाद जी कथा करते थे ना, तो जब पहले पहले कथा करते थे साउथ अफ्रीका में, तो उनकी कथा में साउथ अफ्रीकन लोग हैं ना, वो भागवतम प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे मैं बैठा हूँ आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो मक्खियाँ उड़ रही तो ऐसे टक करके पकड़ के खाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे पास बाकी दुनिया में 4 नियम हैं, आपके लिए 5वां नियम है। वो क्या है? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और क्या, व्यभिचार नहीं करना, और मक्खी नहीं खाना। क्योंकि लोग इतने गिरे हुए थे, हाँ, उन लोगों को उन्होंने भक्त बनाया बाद में, जो कथा में बैठते बैठते उड़ते हुए मक्खियाँ खाते थे, उनको पता ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन जानवर को देखो, हाँ, अरे बकरी को देखो, गाय को देखो, और पालतू जानवरों को देखो आप, शाकाहार के बिना कुछ नहीं खाएंगे, उनका आहार शाकाहार है, शाकाहार ही खाएंगे। गाय को देखो, उसको आप मछली खिलाओ मांस खिलाओ, कभी नहीं खाएगी, भूखी मर जाएगी। और शेर को देखो, उसको घास खिलाओ तो घास नहीं खाएगा, वो भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि जो प्रकृति ने उसको दिया है उसका खाना वही खाएगा वो। और मनुष्य को देखो, सब कुछ खा रहा है जो मिलेगा वो। अरे यहाँ तक जो बच्चे को गर्भपात करके गिराते हैं ना, उसका मांस भी खाते लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं। मनुष्य बनकर क्या प्राप्ति है बताओ आप? एबॉर्शन जहाँ होता है ना हॉस्पिटल में, वहाँ से वो बच्चे जो गिराते हैं उसको खरीदते हैं लोग, उसको काट के फिर वो मांस में मिला देते हैं, भाईखाला में, इधर नवी मुंबई में, अमेरिका में। हाँ, क्योंकि तो कैसा 35,000 बालक का रोज भारत में एबॉर्शन होता है, इतना मांस पैदा होता है, इतने बच्चों को गिरा रहे हैं केवल भारत में एक दिन के अंदर। तो ऐसे ही पैसा बनना चाहिए, तो ये होटल वाले लोग उसको खरीदते और उसको सब्जी बनाकर लोगों को बेचते हैं। और आपको पता नहीं होगा, सबसे अधिक टेस्टी मांस मनुष्य का होता है, जानवर में सबसे अधिक टेस्टी मांस गाय का होता है, जो सबसे पाप का होता है ना वो सबसे अधिक टेस्टी होता है। देखो कभी भी आप, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए बहुत भयंकर पापमय है, वो स्वाद बहुत अच्छा रहता है उसका, मांसाहार बहुत टेस्टी रहता है, लोगों को खाने में मजा आता है उसको। लेकिन जितना अच्छा मजा आता है उसके, उतने पाप का फल उसको मिलता है। उससे आगे जाकर गाय का मांस खाएगा तो वो बहुत भयंकर फल भोगेगा उसका, और उसके आगे जाकर मनुष्य का खाएगा तो उससे भी अधिक फल भोगेगा, इतना सा आनंद लेगा और इतना सारा दुख का फल भोगेगा। दूसरे महायुद्ध हो गया था ना 1942 में, तो कितने सारे सैनिकों ने अपने दोस्तों जो मर गए थे युद्ध में, वो भूख की वजह से उनका भी मांस खाया था उन्होंने। तो ये सब क्या है? ये सब अज्ञान का लक्षण है, जिसकी बुद्धि सही जगह पर नहीं है वो ऐसे कार्य करता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, इनको अच्छा बुद्धि दिया तो उन्होंने ये सारा गलत काम कर दिया है ना, उससे अच्छा जानवर बन के रहना अच्छा है, चलो उनको मनुष्य के शरीर से निकाल दो, मृत्यु के बाद में उनको जानवर बना दो, ताकि जानवर के शरीर में दिमाग कम होता है तो कम दिमाग की वजह से वो पाप नहीं करेगा, जो प्रकृति का नियम है उसको पालन करेगा। मनुष्य को देखो आप, कोई गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, बारिश का मौसम नहीं, सब जगह सब टाइम सेक्स करते रहते हैं, दिन में नहीं रात में नहीं, कोई मुहूर्त नहीं कुछ नहीं, जब चाहे तब सेक्स करते रहते हैं। और पंछी को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली के देखो, सब जानवर को देखो, उतना एक समय रहता है, उसका एक ऋतु रहता है, ऋतु, उस ऋतु के अनुसार वो नर मादी संबंध करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं। अब चिड़िया को देखो, एक ही मौसम में वो पहले घोंसला बनाएगी अपना और फिर नर मादी का संबंध होगा, फिर वो अंडा डालेगी। हर व्यक्ति, हर जीव, सांप हो, कीटक हो, कौवा हो, या मछली हो, या कोई भी जीव हो, उसका एक टाइम रहता है जिस टाइम पे वो नर मादी एकत्र होकर बच्चा पैदा करते हैं। क्योंकि मनुष्य ऐसा एक ही व्यक्ति है जो हर तरीके से प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर सेक्स करते रहता है और नए नए तरीके ढूंढता है कि सेक्स भी किया जाए और बच्चे भी ना हो, नया नया रिसर्च करता है वो। बैठे बैठे बटन चालू हो जाए, टीवी चालू हो जाए, एसी चालू हो जाए, इसलिए रिमोट बनाता है। हाँ, नए नए भोग की वस्तुएं, भोग के यंत्र निकाल के ढूंढ के निकालता है, लेकिन जानता नहीं है वो कि इतनी सारी बुद्धि भगवान ने दी क्यों है। इतनी सारी बुद्धि इसलिए दी है कि आत्मा पर अज्ञान का जो अंधकार पड़ा हुआ है उसमें ज्ञान का प्रकाश मिले, इसलिए भगवान ने आपको इतना बड़ा बुद्धि दिया है। इस दुनिया का भोग करने के लिए नहीं दिया है, और क्योंकि हम दुनिया का भोग बार बार करना चाहते हैं इसलिए बार बार हमको बीमारी, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु से रोका जाता है। ये बीच में हमारे लिए बंद दरवाजे हैं, सभी बंद किए हुए ताकि हम रुक जाएं। हाँ, तो बाद में बीमार हो गया, अंधा हो गया तो वो कैसे भोग करेगा? टाइफॉइड हो गया उसको, जो एड्स हो गया, लिवर की बीमारी हो गई, टीबी हो गया, तो उसके भोग लेने में बाधा आएगी ना थोड़ी सी, आराम करेगा ना घर जाके, जब ठीक होगा तब जाकर फिर वापस भोग करेगा। वो चोर समझे चोरी करके भाग रहा है और गाड़ी के नीचे आ गया, उसके पांव टूट गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, प्लास्टर लगाएगा, 6 हफ्ते तक वो चोरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों पांव में प्लास्टर लगाया ना, उसके हड्डियां टूट गई है, 6 हफ्ते तक उसके कैजुअल लीव, छुट्टी होगी उसकी, तो 6 हफ्ते पाप से बचेगा ना वो कि नहीं बचेगा? इसलिए भगवान हमको बीमारी देते हैं, इसलिए भगवान को कष्ट देते हैं, ताकि हम भोग लेने से बचे, पाप से बचे, और ये दिमाग का गलत इस्तेमाल न करें। तो सही इस्तेमाल क्या है? सही इस्तेमाल यह है कि पाप क्या है, जो गलत कार्य का है, इसको समझना, ये दिमाग का सही इस्तेमाल है। जब हम सुनेंगे भगवान के उपदेश को, भगवान ने क्या कहा है वो समझेंगे, तो पाप करना बंद करेंगे, और पाप करने के बाद में, बंद करने के बाद में क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, और भगवान का नाम लेने से आत्मा की आंखें खुल जाएगी, ज्ञान की आंखें खुल जाएगी, ज्ञान का प्रकाश इस अंधकार में जीवन में खुलेगा। There will be light of knowledge in the darkness of ignorance. अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश होगा, तब जाकर हम सब लोग पहचान पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या करने के लिए भगवान ने हमको इस मनुष्य का दिमाग और शरीर को दिया है, क्यों जानवर को मार के खाने को दिया है, व्यभिचार करने को दिया है, या नशा करने को दिया है? नहीं, भगवान ने इतना कीमती शरीर, इतना कीमती दिमाग, इतना कीमती मनुष्य का जीवन जो है वो आपको उनकी प्राप्ति करने के लिए दिया है, उनके धाम तक पहुंचने के लिए दिया है। उनके धाम तक पहुंचने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत होती है, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, बहुत निश्चय करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ये सब करने के लिए अच्छी बुद्धि की जरूरत है, अच्छे ज्ञान की जरूरत है। जब ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसको बुद्धि के आधार पर जीवन में उतारेंगे तो हम सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जब बीमार पड़ते हैं हम लोग तो सोचना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्या कारण है उसका, इसका उपाय क्या है, ये बार बार होने वाली बीमारी से, बुढ़ापे से हम कैसे बचें? ये प्रश्न जब मन में आता है तो ही हम मनुष्य कहने के योग्य हैं। ये तो हमारा जीवन जो है जानवर से भी घिलौना है, क्योंकि कम से कम जानवर के हाथ में पाप नहीं होता है, प्रकृति का जो नियम है चलते रहते हैं वैसे ही। केवल मनुष्य के हाथ से पाप, पुण्य, भक्ति, अध्यात्म ये होते रहता है, और पाप को और गलत कार्यों को त्याग करके अध्यात्म और भक्ति, डिवोशन, इसको करना, ये दिमाग का सच्चा उपयोग है, सही उपयोग है। नहीं तो क्या, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया, मोतिया निकाल दिया, दोबारा दिखने लगा, तुरंत भागे हम लोग टीवी देखने के लिए, गलत चीज पढ़ने के लिए। अरे 6 महीना हमने सुंदर औरतों का दर्शन नहीं किया, चलो जाओ वापस देखिए, देख के आएंगे सुंदर सुंदर औरतों को। अगर ये ऐसा करेंगे तो जो दिया हुआ दृष्टि है भगवान का वो भी आगे जाकर नष्ट हो जाएगा। हम लोग बोलते बताते हैं कि हम गाँव में जाएंगे तो सिगरेट नहीं पीना, जो दृष्टि प्राप्त हुई वो भी नष्ट हो जाएगी, शराब नहीं पीना नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोलते हैं ना आपको, घर जाके टीवी मत देखना, आँखों पर दबाव आएगा, आँख और खराब हो जाएगी आपकी। तो प्राप्त हुई जो दृष्टि है हमारी उसका सही उपयोग करना चाहिए। जिनकी आंखों में मोतिया है उनके लिए और जिनकी आंखों में नहीं है उनके लिए भी यही उपदेश है। ये ज्ञान जब प्राप्त करेंगे तब जीवन का उद्धार होगा, तब हम एक इंसान के रूप में जी सकते हैं, एक मनुष्य अपने आप को कहला सकते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं इंसान हूँ। ये कब कह सकते हैं? जब हम पापों को छोड़ेंगे और भगवान का नाम लेंगे, तब जाकर पहले हम मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बनने के बाद में फिर भक्त बन जाते हैं और भक्त बनने के बाद भी भगवान को बाद में मिल सकते हैं, नहीं तो यहीं पर रहेंगे। हाँ, जो जानवर के शरीर में हो, पंछी के शरीर में हो या इंसान के शरीर में हो, इसी जेल में पड़े रहेंगे यहाँ पर जन्म जन्मांतर तक, अनंत जन्म तक यहीं पड़ते रहेंगे। इसलिए भारत देश महान क्यों है? यहाँ का रिक्शा वाला है या भंगी है वो जानता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, हम शरीर नहीं है आत्मा है। यहाँ का अनपढ़ आदमी भी जानता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, पुनर्जन्म क्या होता है, ये सब व्यक्ति भारत के जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के आदमी सब जानते हुए भी फॉरेन के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? नंगा नाच कर रहे हैं, हम लोग भी नंगा नाच कर रहे हैं। उनके पास भोग है, उनका आनंद है, समृद्धि है, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। वो लोग हाफ चड्डी पहनते, हम भी हाफ चड्डी पहनते। वो लोग कम से कम कपड़ा पहनते, हम भी कम से कम कपड़ा पहनते। हमको लगता है यही एडवांसमेंट है, ये बहुत मॉडर्न आदमी है। हाँ, जब कितने कपड़े कम पहने हैं, सब कपड़ा खोल के रखा है, इसको मॉडर्न समझते हैं। बाल छोड़ के घूम रहे हैं, बड़े गॉगल लगाकर कम कम कपड़े पहन के, समझते बहुत मॉडर्न है ये लोग, बहुत अमीर और मॉडर्न है, बुद्धिमान लोग हैं, बहुत एडवांसमेंट कर चुके हैं, है ना। सबसे कम कपड़े का सबसे अधिक दाम चुकाते हैं और खरीद के लेके आकर पहनते हैं और सबसे अधिक शरीर को दिखाते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े एडवांसमेंट में हैं। ये नरक जाने का रास्ता बना रहे हैं। मनुष्य का शरीर मिला है मुक्त होने के लिए, लेकिन अपने हाथों से, अपने दिमाग से नरक का रास्ते पर चल रहे हैं, सोच समझ कर और गर्व से कहो हम नरक जा रहे हैं। ऐसी हमारी अवस्था है। हाँ, ये सब हमारी कहानी है और किसी की कहानी नहीं है, हमारी खुद की दुख भरी कहानी है। तो इस दुख भरी कहानी का अंत करना होगा ज्ञान के प्रकाश से और भक्तों के संग से, तब जाकर भगवान ने जो बीमारी दिया है उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कि चलो मैंने बीमारी दिया और ये समझ गए ये सब गलत है और सही क्या, ये भी समझ गए और सही कार्य करने लगे, तो जिस काम के लिए बीमारी दिया था उसका उद्देश्य सफल हो गया। नहीं तो बार बार बीमार पड़ने पर भी समझ में नहीं आएगा तो बीमारी का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। ये बीमारी आपको भगवान से मिला सकती है। भक्ति विधान हॉस्पिटल में आप आएंगे या एम्प्लॉय करके काम करेंगे, मरीज बनकर आएंगे, तो आपको भगवान की पहचान हो जाएगी, भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, भगवान से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे मिलना है वो समझ सकते हैं और उस पर अमल करेंगे, तो इसी जीवन में आप जो भी कुछ हो आपको इस जीवन के अंत में भगवान की मुलाकात हो सकती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सत्य है। ये तो हम इतना यकीन से कैसे बोल सकते हैं? हमने क्या भगवान से कुछ ठेका लिया है क्या कि आपके बारे में हम बोलेंगे आप हमको घूस देना, हाँ हमारा कमीशन देना? ऐसा नहीं है, ये सत्य है। चाहे मैं बोलूँगा या कोई गांव का आदमी बोलेगा, कोई शहर का साइंटिस्ट बोलेगा, सत्य सत्य ही होता है। सत्य कभी किसी के अलग से मुंह से आने से बदलता नहीं है। अगर छोटा बालक भी आके बोलेगा दो और दो चार हो गए होते हैं, और 100,000 लोग बोलते हैं दो और दो पाँच होते हैं, और एक बालक उठ के बोलता है कि नहीं दो और दो चार होते हैं, तो सत्य ही होता है। वो बालक के बोलने से वो सत्य असत्य नहीं बनता है। सत्य कहीं भी सत्य ही रहता है, अंधेरे में, उजाले में, जंगल में, शहर में, घर में, घर के बाहर, हाँ सत्य होता है। वो कोई भी बोलेगा तो सत्य ही होता है वो। इसलिए हमको सत्य से डरना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए, उतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना हमारे पास निश्चय होना चाहिए कि ये जीवन सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य को समझने के लिए, तब जाकर हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल है। नहीं तो भगवान इस कीमती मनुष्य जीवन को हमसे छीन कर हमको वो जीवन देंगे जो इससे घटिया होगा, या तो पंछी का होगा, या तो जानवर का होगा, या मछली का होगा, या पेड़ का होगा, या कीटक का, मच्छर का होगा, और हम दुख भोगते रहेंगे यहाँ पर बैठ के जन्म जन्मांतर तक। इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं, हाँ इसका नाम रखा है, क्या रखा है नाम प्रोग्राम का? हाँ, जागृति। का मतलब क्या होता है? जब हम अज्ञान के अंधकार में सोए हुए हैं, वो ज्ञान में जगना चाहिए सब लोगों को। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा है जागृति, हमारी आत्मा जगे, सत्य की ओर जगे, सत्य के प्रकाश की ओर जगे और अपने जीवन को धन्य करे, शरीर के कैद से आत्मा को मुक्त होने का मौका मिले। इसलिए ये ऑन ड्यूटी जागृति कार्यक्रम बनाया गया है। यहाँ पर आकर थोड़ा काम से ब्रेक मिलेगा, इसके लिए नहीं दिया है कि चलो ऑफिशियली ऑन ड्यूटी आप लोग को दो घंटा एक घंटा आराम करने को मिलता है, जाकर बैठ जाओ वहाँ पर, सो भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं बनाया है, हम सबकी आत्माओं को अज्ञान के और दुख के अंधकार से मुक्त करने के लिए बनाया गया है प्रोग्राम। इसलिए मैं इतना चीख से के बोल रहे हैं ताकि आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो और जीवन में आनंद उत्पन्न हो और भगवान की ओर से हम प्रगति करें, इसलिए प्रोग्राम बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो अंधे बाबा थे, वो अंधे थे कि आंख वाले थे, क्या विचार है आपका? उनको शरीर की आंखें नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा की आंखें पूरी खुली हुई थी। इसलिए अंधा होने पर भी उन्होंने बनाया हुआ चित्रपट आज भी वहाँ पर रखा है। आप जाके देखिए, कभी यात्रा में आइए तो वहाँ दर्शन कीजिए। राधा रानी ने स्वयं उसको स्वप्न देकर उसके हाथों से शरीर पर आंख नहीं होते हुए भी उसके हाथ से वो सुंदर लीला का चित्रपट बनवाया। सूरदास जी भी ऐसे ही थे, वो भी अंधे थे, 700 साल तक जिए वो चंद्र सरोवर के किनारे, और ऐसे भजन लिखे कि आज भर दुनिया भर में गाए जाते हैं। तो शरीर की आंखों से अंधे थे वो, लेकिन आत्मा के आंखों से बहुत सक्षम थे, बहुत दृष्टि बढ़िया थी उनकी, दिव्य दृष्टि थी उनकी। इसलिए हमारा कैंप का नाम क्या रखा है हमने? दिव्य चक्षु यज्ञ। आपके आंखों से मोतियां निकालकर आपको दिव्य दृष्टि देंगे, भगवान के विषय में जानकारी देंगे, और आप जगह जगह उस नज़र से भगवान को देख सकेंगे। इसलिए वो दिव्य चक्षु यज्ञ है। और कई बार मोतियाँ निकाला, फिर शराब पीना वैसे रखा, सिगरेट पीना वैसे रखा, तो दिव्य चक्षु कहाँ से आएंगे? वहीं रहेंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फेल हो गया हो, क्यों? क्योंकि बनी मिली हुई आँखों से, दृष्टि से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ये समझ में नहीं आएगा, तो ऑपरेशन फेल हो गया। तो सही रूप में ये ऑपरेशन सफल होना चाहिए। जब हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तब हमारा ये सारा प्रयास जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन का, ये सब सफल है। तब ये भक्तिवेदांत हॉस्पिटल खोलने का प्रयास भी सफल है, तो दिमाग का ऑपरेशन हो, कान का हो या पेट का हो, अगर वो ऑपरेशन होते होते अगर आपको ध्यान में आ गया कि हम भगवान के अंश हैं और ये शरीर नहीं है और भगवान को प्राप्त करना है, ये समझ में आ गया, तो ये सारा प्रपोजल जो है वो सफल हो गया। हाँ, आपका नौकरी भी सफल हो गया, क्योंकि आपको नॉलेज हो गया ना, ज्ञान मिल गया आपको। तो आइए हम सब मिलकर इस जीवन के अंधकार को नष्ट करें। हाँ, उस अंधे बाबा की तरह आत्मा की प्रकाश, आत्मा की आँखों को खोलकर भगवान को देखें, भगवान का दर्शन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।